शेष अंश विषय हिंदू स्त्री का पत्नित्व पृष्ठ संख्या 78। पति होने के इच्छुक युवकों की मनोवृत्ति के विषय में तो कुछ कहना व्यर्थ ही है। वे प्रायः पत्नी के भरण पोषण का भार ग्रहण करने के पहले भावी ससुर से कन्या को जन्म देने का भारी से भारी कर वसूल करना चाहते हैं। एक विलायत जाने का खर्च चाहता है, दूसरा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई समाप्त करने के लिए रुपया चाहता है, तीसरा व्यवसाय के लिए प्रचुर धन मांगता है। सारांश यह है कि अपने आप को ऊंची से ऊंची बोली के लिए नीलाम पर चढ़ाए हुए हैं। प्रश्न उठता है कि क्या यह क्रय विक्रय, यह व्यवसाय स्त्री के जीवन का पवित्रम बंधन कहा जाएगा? क्या इन्हीं पुरुषार्थ और पराक्रमहीन परावलंबी पतियों से वह सौभाग्यवती बन सकेंगी? यदि नहीं तो वह इस बंधन को जो उसे आदर्श माता और आदर्श पत्नी के पद तक नहीं पहुंचा सकता, केवल जीविका के लिए कब तक स्वीकार करती रहेगी? अवश्य ही यह मत्स्य वेद या धनुष भंग द्वारा युवक के पराक्रम की परीक्षा का युग नहीं है, परंतु स्त्री पुरुष में इतने स्वावलंबन की आवश्यकता ही उपेक्षा रखती है कि वह उसके पत्नित्व को व्यवसाय की तुला पर न तोले। पृष्ठ संख्या 79। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो किसी भी नवीन दृष्टिकोण को समाज और धर्म की स्थिति के लिए घातक समझ लेते हैं और भरसक किसी भी परिवर्तन को आने नहीं देते। फल यह होता है कि प्रतिरोध से और भी सबल होकर उसका प्रवाह प्राचीन की मर्यादा भंग कर देता है। ऐसी क्रांति की आवश्यकता ही नहीं होती यदि हमारे समाज समुद्र में इतनी गहराई होती कि वह नवीन विचारधाराओं को अपने में स्थान दे सकता। पैराग्राफ चेंज। स्त्री के विकास की चरम सीमा उसके मातृत्व में हो सकती है, परंतु यह कर्तव्य उसे अपनी मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को तोलकर स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए, परवश होकर नहीं। कोई अन्य मार्ग न होने पर बाध्य होकर जो स्वीकार किया जाता है वह कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। यदि उनके जन्म के साथ विवाह की चिंता न कर उनके विकास के साधनों की चिंता की जावे, उनके लिए रुचि के अनुसार कला उद्योग धंधे तथा शिक्षा के द्वार खुले हों जो उन्हें स्वावलंबिनी बना सके, और तब अपनी शक्ति और इच्छा को समझकर यदि वे जीवन संगी चुन सके तो विवाह उनके लिए तीर्थ होगा जहां वे अपनी संकीर्णता मिटा सकेंगी, व्यक्तिगत स्वार्थ को बहा सकेंगी और उनका जीवन उज्ज्वल से उज्ज्वलतर हो सकेगा। इस समय उनके त्याग पर अभिमान करना वैसा ही उपहासास्पद है जैसा चिड़िया को पिंजरे में बंद करके उसके परवशता से स्वीकृत जीवन उत्सर्ग का गुणगान। पैराग्राफ चेंज। समय की गति धनुष से छूटे हुए तीर की तरह आगे की ओर है, पीछे की ओर नहीं। जीवन के जिन परिस्थितियों को हम पीछे छोड़ आए हैं उन्हें हम लौटा नहीं सकते। इससे उनके अनुरूप अपने आप को बनाते रहना, जीवन को एक वृत्त में घुमाते रहना होगा। जिस प्राचीन संस्कृति का पक्ष लेकर हम विकास का मार्ग रुंधना चाहते हैं, यदि उसकी छाया भी हम छू सके होते तो हमारे कार्य ऐसे अर्थहीन और दृष्टिकोण ऐसा संकीर्ण न हो सकता। अनेक संस्कृतियों, विभिन्न दृष्टिकोणों तथा परस्पर विरोधी विचारों को समाहित कर लेने वाला अतीत चाहे हमें आगे न बढ़ाता, परंतु पीछे लौटाना भी न सिखाता। हमारा निर्जीव रूढ़िवाद हमारे पवित्रम संबंधों में भी पशुता की अधिकता आदि प्रमाणित करते हैं कि हम भटक कर ऐसी दिशा में बढ़ चले जा रहे हैं जो हमारा लक्ष्य कभी नहीं रही। पृष्ठ संख्या 80। हम स्त्रियों के विवाह की चिंता इसलिए नहीं करते कि देश या जाति में सुयोग्य माताओं और पत्नियों का अभाव हो जाएगा, वरन इसलिए कि उनकी आजीविका का हम कोई और सुलभ साधन नहीं सोच पाते। माता पिता चाहे संपन्न हो चाहे दरिद्र, कन्या का कोई उत्तरदायित्व तो प्रसन्नता से अपने ऊपर नहीं लेना चाहते और न विवाह के अतिरिक्त उससे छुटकारा पाने का मार्ग ही पाते हैं। विधवाओं की हमारे निकट एक ही समस्या है। किसी स्त्री के विधवा होते ही प्रश्न उठता है कि उसका भरण पोषण और उसकी रक्षा कौन करेगा? यदि उसे उदर पोषण की चिंता नहीं है तो रक्षक के अभाव में, दुराचार में, प्रवृत्त करने वाले प्रलोभन से घिरी रहती है, और यदि सबलहीन है तो उसकी आवश्यकताएं ही अन्य साधनों के अभाव में बुरे मार्ग को स्वीकार करने के लिए उसे विवश कर देती है। यदि हम गृह के महत्व को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें ऐसी गृहिणियों की आवश्यकता होगी जो अपने उत्तरदायित्व को समझ बूझ कर स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करे, केवल जीविका के लिए विवश होकर या अपनी रक्षा में असमर्थ होकर नहीं। पैराग्राफ चेंज। माता पिता को बाध्य होना चाहिए कि वे अपनी कन्याओं को अपनी अपनी रुचि तथा शक्ति के अनुसार कला, व्यवसाय आदि की ऐसी शिक्षा पाने दें जिससे उनकी शक्तियाँ भी विकसित हो सके और वे इच्छा तथा आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रों में कार्य भी कर सकें। राष्ट्र की सुयोग्य संतान की माता बनना उनका कर्तव्य हो सकता है, परंतु केवल उसी पर उनके नागरिकता के सारे अधिकारों का निर्भर रहना अन्याय ही कहा जाएगा। पैराग्राफ चेंज। इस विवशता के कारण ही वे किसी पुरुष की सहयोगिनी नहीं समझी जाती। सत्य भी है, बंदी के पैरों की बेड़ियां साथ रहने पर भी क्या सुखद संगनी की उपाधि पा सकेगी? प्रत्येक पुरुष पत्नी के रूप में स्त्री को अंगीकार करते समय अनुभव करता है मानो यह कार्य वह केवल परोपकार के लिए कर रहा है। यदि उसे इतना अवकाश मिले कि वह आजीवन संगनी के अभाव का अनुभव कर सके, उसे खोजने का प्रयास कर सके और उस उत्तरदायित्व के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके, तो यह उपकार की भावना एक क्षण भी न ठहरे जो अधिकांश घरों में दुख का कारण बन जाती है। पृष्ठ संख्या 81। उन्हें न स्वयंवर में वरमाला पाना है, न अप्रतिम पराक्रम द्वारा प्रतिद्वंद्वियों को परास्त कर अपने आप को वरण योग्य प्रमाणित करना है और न विशेष विद्या बुद्धि का परिचय देना है। केवल उन्हें जीवन भर के लिए एक सेविका की सेवाएं स्वीकार कर लेनी है और इस स्वीकृति के उपलक्ष्य में वे जो चाहे मांग भी सकते हैं। अतः वे इस बंधन को महत्वपूर्ण कैसे और क्यों समझे? उन्हें आवश्यकता न होने पर भी दर्जनों विवाह योग्य कन्याओं के पिता उन्हें घेरे रहते हैं तथा अधिक से अधिक धन देकर अधिक से अधिक खुशामद करके अपनी रूपसी, गुणवती और शिक्षित पुत्रियों को दान देकर कृतार्थ हो जाना चाहते हैं। ऐसा विवाह यदि स्त्रीत्व का कलंक न समझा जावे तो और क्या समझा जावे।